नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम डॉक्टर लुका की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको काफी लाभ मिल रहा है। आज हम गठिया के विषय में देखेंगे, डॉक्टर लुका क्या कहते हैं।
मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज संसार के अनेक रोग या तो नए या किसी न किसी कारण अधिक विकराल हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर हृदय रोग और लकवा हमारे भोजन और व्यायाम की कमी के कारण अधिक बुरी दशा में हो गए हैं। परंतु गठिया तो समय के आरंभ से ही है। गठिया का प्रकोप सब समाज, संस्कृति और जातियों पर है। मित्रों, ऐसा कोई समय और स्थान नहीं है जहाँ गठिया ना रहा हो। आप अब बाहर जाएं तो वृद्ध मनुष्यों को देखना, उनमें से कई के हाथ पैर कुरूप दिखाई देंगे। यह गठिया के कारण है। निश्चय ही गठिया युवाओं की अपेक्षा वृद्धों पर अधिक प्रकोप दर्शाती है, परंतु गठिया हर आयु वर्ग पर प्रभाव डालती है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही पर इसका प्रभाव है। मित्रों, गठिया की सर्वनिष्ठा कितनी है? जैसा हमने भी कहा है कि आयु के बढ़ने के साथ साथ गठिया की सर्वनिष्ठा बढ़ती जाती है। 5 से 10% या अधिक अफ्रीका वासियों में किसी न किसी प्रकार का गठिया का प्रकोप पाया जाता है। मित्रों, लगभग 90% अफ्रीका वासी 40 वर्ष की आयु में पहुंचते ही गठिया संबंधित परिवर्तन का सामना करते हैं। यह एक डरावनी बात है, नहीं क्या? आपको वृद्धावस्था का बोध पहले ही होने लगता है, आप वृद्ध हो जाते हैं। मित्रों, क्या गठिया एक प्रकार की बीमारी है क्या? नहीं, सच तो यह है कि गठिया अनेक प्रकार के हैं। तब भी 3 प्रकार की गठिया मुख्य हैं। सबसे अधिक सामान्य गठिया है हड्डियों की गठिया या अधोगति गठिया। मित्रों, वृद्ध मनुष्यों में यही गठिया सामान्य है। दूसरी आम गठिया है जलन और दर्द उत्पन्न करने वाली गठिया। यह अधेड़ आयु के मनुष्यों में प्राय पाई जाती है, परंतु छोटे बच्चों की भी हो जाती है। तीसरी गठिया है जोड़ों में दर्द और सूजन की गठिया। इसे धनवानों या राजाओं की गठिया कहते हैं। तदापि सब आयु वर्ग तथा आमदनी वर्ग के मनुष्यों में यह रोग होता है। यह गठिया मुख्यतः पांव के अंगूठे में होता है और इसमें जोड़ों में कण उत्पन्न हो जाते हैं। गठिया स्वास्थ्य संबंधी समस्या क्यों है? इसके 2 कारण हैं। पहला, यह दुखदायी है और दर्द एवं कष्ट देती है। दूसरा, गठिया हमारे मनोवांछित कार्यों में बाधक होती है। इस कारण गठिया ऐसा मुख्य विनाशक रोग है। मित्रों, यही दर्द कम भी हो तो भी रोगी को अपनी इच्छा का काम करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के तौर पर वृद्ध मनुष्यों को चलने में परेशानी, घर साफ करने में परेशानी आदि, क्योंकि मित्रों उनके घुटने गठियाग्रस्त होते हैं। इसके कारण वे तो परेशानी उठाते ही हैं, उनके घर वाले भी परेशान होते हैं। वृद्ध रोगी जिनके हाथ में गठिया हो जाने के कारण जब वे खाना खाते हैं और वह यदि चम्मच से खा रहे हैं तो चम्मच छूटकर गिर जाता है। मित्रों, एक 35 वर्षीय महिला की कमर में दर्द और जलन वाली गठिया हो और उसका बच्चा 7 वर्ष का हो तो वह ना तो अपने बच्चे के साथ खेल सकती है और ना ही चल सकती है। एक 40 वर्षीय अफ्रीका वासी के पाँव में अंगूठे में गठिया है। उसे अपनी एक महत्वपूर्ण मीटिंग छोड़नी पड़ती है। इन सबको गठिया है, इसलिए गठिया में दर्द और कष्ट ही नहीं हमारी संपूर्ण जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। मित्रों, गठिया होने का कारण क्या है? इससे पूर्व कि हम इस प्रश्न का उत्तर दें, हमें यह ध्यान रखना है कि परमेश्वर सब रोगों और शारीरिक विकारों का नियंत्रक है। लगभग 1700 ईसा पूर्व में मूसा इसराइलियों को मिस्र देश से लेकर बाहर जा रहा था। मिस्र का राजा उसे जाने नहीं दे रहा था। वह उन्हें अपने देश के आर्थिक कारणों से दास बनाकर रखना चाहता था, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने इनके पूर्वज अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वह उसको मध्य पूर्वी एशिया का एक भाग देगा और उसके वंशज वहां आशीषित होंगे। अतः इसराइलियों का मिस्र देश से बाहर निकलना मित्रों परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूर्ति का ही एक चरण था। मूसा 10 बार राजा के पास गया और उन्हें ले जाने की विनती की, परंतु राजा नहीं माना। उसने हर बार कठोरता से इनकार कर दिया। परमेश्वर ने राजा से इनकार करने पर हर बार उन पर विपत्ति डाली कि राजा का मन परिवर्तन हो। मित्रों, विपत्तियों में मक्खियों एवं टिड्डियों का प्रकोप भी था। कुछ विपत्तियां चरम रोग तथा अन्य रोग की भी थीं। अंत में परमेश्वर ने प्रत्येक अवज्ञा करने वाले के पहलौटे को मार दिया। मित्रों, यह कहानी हमें बाइबल की निर्गमन नामक पुस्तक में मिलती है। इतिहास की इन घटनाओं से स्पष्ट प्रकट होता है कि परमेश्वर पशुओं, स्वास्थ्य, जीवन और मृत्यु का परमेश्वर है। ऐसा ही गठिया रोगियों के साथ है। परमेश्वर अनुमति देता है। यही नहीं, परमेश्वर यह भी प्रकट करता है कि वह किसी भी रोग के आरंभ होते हैं उसका निवारण भी कर देता है। उसने मिस्र में रोमगियों के साथ ऐसा ही किया था। उसने ज्यों ही उन पर रोग भेजे त्यों ही उनका उन्मूलन भी किया। हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर गठिया जैसे रोग को अनुमति क्यों देता है, बस इतना ही जानते हैं कि वह अनुमति देता है। परंतु हम यह जानकर शांति पाते हैं कि परमेश्वर सब रोगों और शारीरिक विकारों को आने में नियंत्रण में रखता है। यदि किसी को कोई रोग होता है तो वह उसके उद्देश्य को निमित्त है और यदि वह चाहे तो उनका उन्मूलन कर देता है। अब हम देखेंगे कि गठिया होने के कारण क्या है। स्मरण कीजिए मित्रों कि गठिया मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, हड्डियों की गठिया, जलन वाली गठिया और पैर के अंगूठे की गठिया। हम सबसे पहले हड्डियों की गठिया को देखेंगे। हड्डियों की गठिया कहने से बात समझ में नहीं आती है। अब यदि कहें कि यह विकारोत्पाद गठिया है तो अधिक उचित होगा। ऐसा कैसे होता है? इसमें प्रभाव के मुख्य शारीरिक भाग हैं जोड़। हम कहते तो हड्डी हैं परंतु इसका प्रभाव नरम हड्डी को प्रभावित करता है। जैसा हम देख चुके हैं कि जब स्त्री हो या पुरुष 40 वर्ष की आयु पार कर जाता है तब एक्सरे लेने पर प्रकट होता है कि उसके जोड़ों में गठिया संबंधित परिवर्तन आता है। वरन सच तो यह है कि यह परिवर्तन 30 वर्ष की आयु में ही आरंभ हो जाता है, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए 50 वर्ष की आयु तक गठिया का प्रकट रूप धारण कर लेते हैं। अतः 60 वर्ष की आयु तक अधिकांश जब गठिया का प्रकोप अनुभव करने लगते हैं। ऐसा क्यों है कि शरीर के जोड़ समय के साथ खराब होने लगते हैं? निश्चित रूप से कोई कुछ नहीं कह सकता है, परंतु हम यह तो जानते हैं कि नरम हड्डियां धीरे धीरे अपनी मोटाई और शक्ति खोने लगती हैं। इसलिए उचित होगा कि हम यहाँ नरम हड्डियों का उद्देश्य समझें। हमारे जोड़ों में नरम हड्डियाँ गद्दी का काम करती हैं। यही कारण है कि हमारे दौड़ने या कूदने में हड्डियाँ आपस में नहीं टकराती हैं। मित्रों, ये नरम हड्डियाँ ना हों तो हमारी हड्डियाँ भागने, दौड़ने, खेलने कूदने में टकराने लगेंगी। इसलिए हमें इन गद्दीदार हड्डियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाते समय अत्यधिक सावधानी रखी और बड़ी ही अद्भुत रचना की। और यही नहीं, वह हमारे विचारों को भी जानता है। राजा दाऊद ने 1100 ईसा पूर्व यह तथ्य स्पष्ट कर दिया था। मित्रों, यह विचार बाइबल में भजन संहिता नामक पुस्तक में मिलता है। इब्रानियों उसके 4 अध्याय और 12 पद में बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मित्रों, यह बाइबल अंश 1970 में लिखा गया था। आज गठिया पर चर्चा करने के लिए यह पद अत्यधिक रोचक पद है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे विचारों को भी जांचता है। यह एक आश्चर्यजनक बात है। हम में ऐसा कौन है जिसके मन में विचार नहीं उठते, चाहे वह भले हों या बुरे। हम सब अपराधी हैं मित्रों। यह कैसे हो सकता है कि हम निर्दोष हों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे विचार एवं व्यवहार बुरे हैं। रोमियो 3 अध्याय और उसके 23 में बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मित्रों, यह बात 1960 में पौलुस नामक एक संत ने लिखी थी। रोमियो बाइबल की भी एक पुस्तक है। इसी पुस्तक में संत पौलुस कहते हैं रोमियो 6 अध्याय और उसके 23 पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए हम सब पाप करते हैं और हम सब के विचार बुरे हैं। इसलिए इसका परिणाम है अनंत मृत्यु, अर्थात परमेश्वर से अलगाव। परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत मृत्यु नहीं मित्रों, परंतु अनंत जीवन है। हम ये अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि हम सबको, प्रत्येक जन को अनंत जीवन प्राप्त हो। मित्रों, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, अन्यथा ये पाप हमें परमेश्वर से अलग किए हुए हैं। उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए कि हम उन्हें लेकर परमेश्वर के समक्ष खड़े ना हों। मित्रों, हमारे पापों ने उसे मृत्यु दी, परंतु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित करके मृत्यु पर अपनी जय प्रकट की। यीशु आज भी जीवित है और वह आपके जीवन द्वारा जीना चाहता है। इससे पहले कि मैं इसकी चर्चा करूं, मैं दूसरे प्रकार की गठिया के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूं। इस गठिया को दर्द और सूजन वाली गठिया कहते हैं। यह कैसी गठिया होती है? इसमें 4 महत्वपूर्ण लक्षण हैं: सूजन, दर्द, गर्माहट और लाल हो जाना। हम सबको किसी वस्तु से चोट लगने या कटने का अनुभव है। ये चारों लक्षण वास्तव में हमारे शरीर की आत्मचिकित्सा का प्रमाण है, परंतु गठिया में शरीर आत्मचिकित्सा नहीं करता है। यह एक विचित्र शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर स्वयं की हानि करके यह सूजन, दर्द, गर्माहट और लाली उत्पन्न करता है जो जोड़ों में होती है जहां उसे होना नहीं चाहिए। मित्रों, यह हम स्वयं नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहें, क्या हम देह को हानि पहुंचाने वाले काम नहीं करते हैं? हम उचित भोजन नहीं करते, उचित व्यायाम नहीं करते, धूम्रपान करते हैं और आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं इत्यादि। हम झूठ भी बोलते हैं और धोखा देते हैं, चोरी करते हैं। यह सब समय आने पर हमारी हानि करता है। गठिया भी मित्रों ऐसा ही है। वह वहां समस्या उत्पन्न करता है जहां उसे करना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में पाप और अनुचित कार्य ऐसा ही करते हैं। वे हमारे मन मस्तिष्क में अपराध बोध उत्पन्न करते हैं जहां ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कि क्रूस पर प्रभु यीशु की मृत्यु हमें प्रभु यीशु पर अपने पाप डालकर मुक्ति दिलाती है, परंतु हम ये कैसे करते हैं? स्मरण करें कि हम संत पौलुस द्वारा संसार में लिखी एक पुस्तक के संदर्भ देख रहे थे। यह बाइबल की एक पुस्तक है और इस पुस्तक में संत पौलुस बताते हैं कि हम अपने पाप प्रभु यीशु पर कैसे डाल सकते हैं। वह कहते हैं, रोमियो 10वें अध्याय और उसके 9-10 में हमें यह मिलता है जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब मित्रों, इसका अर्थ क्या है? हमें अंगीकार करना है कि यीशु हमारे जीवन का प्रभु और शासक है, अर्थात हमारी धन संपदा, हमारा परिवार, हमारा कार्य आदि, हमारा सब कुछ। हमें यह स्वीकार करना है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन की प्रत्येक वस्तु का प्रभु है। तदुपरांत हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया और परमेश्वर ने उसे अपने इकलौते पुत्र को पुनः जीवित किया। यदि हम इस पर विश्वास करके इसका सार्वजनिक अंगीकार करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे। हम पापों से उद्धार पाकर मसीह में आनंद और स्वतंत्रता का जीवन पाएंगे और उसी के साथ अनंत जीवन में प्रवेश भी करेंगे। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसा हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसी समय मेरे साथ ही प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। मैं यह भी मानता हूं कि यीशु ने मेरे ये पाप अपने ऊपर ले लिए कि मुझे अब और सदा के लिए जीवन मिले। मैं यह भी मानता हूं कि मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु क्रूस पर मरने के बाद मृतकों में से जी उठे कि मृत्यु पर अपनी विजय प्रकट करें। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मित्रों, यदि आपने प्रार्थना की है तो अब और सदा के लिए परमेश्वर की आप संतान हो गए हैं। आपको बधाई हो। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। आप हमसे फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09-588-20414। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।